जोड़न
है। ये अघहन शुक्ला षष्ठी का दिन होता है, आज अग्रहायण का महीना है और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। तो जगन्नाथपुरी में आज के दिन जगन्नाथ जी को गर्म कपड़े ओढ़ाए जाते हैं, इसलिए ओढ़न षष्ठी कहा जाता है। ओढ़न का मतलब ओढ़ाना, भगवान को गर्म कपड़ा ओढ़ाया जाता है। तो वहाँ की जलवायु के अनुसार आज के दिन भगवान को कपड़ा ओढ़ाया जाता है, गर्म कपड़ा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा ही हो, जैसे दिल्ली में पहले से ही ठंड शुरू हो गई तो वो अलग बात है, लेकिन जगन्नाथपुरी की जलवायु के अनुसार जो है आज के दिन ठंड शुरू होती है। तो इसमें एक विशेष घटना है, आज सवेरे भी हमने संक्षेप में सुनाई थी, तो ये चैतन्य भागवत में ये घटना लिखी है, तो बहुत सुंदर घटना है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। चैतन्य महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी में ही लीला कर रहे थे, और जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के बहुत से संगी थे जो कि भगवान के संग रहते थे और भगवान के संग का आनंद लेते थे। तो उनमें से एक पुंडरीक विद्यानिधि थे, भगवान के बहुत विशेष प्रिय संगी थे, और एक दूसरे थे स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही घनिष्ठ संगी थे। तो पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर में बहुत विशेष एक दूसरे के प्रति घनिष्ठता थी, एक दूसरे से मतलब बहुत हिले मिले थे, है ना। तो हुआ क्या कि जब आज का दिन आया तो ओढ़न षष्ठी का दिन आया, उस दिन श्री जगन्नाथ भगवान नए वस्त्र धारण करने लगे। श्री जगन्नाथ उस दिन माड़ दिए हुए वस्त्र पहनते हैं, माड़ के वस्त्र पहनते हैं, अतः जैसी उनकी इच्छा हो सेवक उसी प्रकार से करते हैं। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी जो है अपनी इच्छा स्वयं बताते हैं और उनके जो सेवक हैं उनकी इच्छा के अनुसार करते हैं, है ना। तो ये बहुत विशेष जगन्नाथ जी का प्रभाव है जगन्नाथपुरी में। तो उनकी इच्छा है माड़ के वस्त्र पहनने की, तो उनको पहनाया जाता है, जबकि शास्त्रों में अशुद्ध माना गया है माड़ के कपड़े। सब भक्तों को लेकर श्री गौर सुंदर भी शीत वस्त्र ओढ़ने के दिन की दर्शन को गए। मृदंग मूचंग शंख दुंदुभी नगाड़े कहाल दगड़ ढपो काढ़ा नामक विशाल बाजे बज रहे थे, बहुत बाजे बज रहे। श्री अनंत देव उस दिन अनेक प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, अनंत देव यानी जगन्नाथ अनेक प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ये उत्सव अघहन शुक्ला षष्ठी से माघ पूर्णिमा तक चलता है, ये मतलब जाड़ा माघ पूर्णिमा तक जाड़ा चलता है। वस्त्र पहनाते पहनाते रात्रि होने लगी। जगन्नाथ जी जो है कितने वस्त्र पहनते हैं, सवेरे से लेकर रात तक वस्त्र पहनते रहे। रात होने लगी, भक्तों के साथ श्री प्रभु गौरचंद्र ये देखकर प्रेम में डूब गए। चैतन्य महाप्रभु ने भी दर्शन किया जगन्नाथ जी का, दिन भर दर्शन किया, दिन भर वस्त्र ही पहनते हैं तो दिन भर उनका जो है यही लीला है, वस्त्र पहनने की लीला। तो चैतन्य महाप्रभु दिन भर जगन्नाथ जी के दर्शन में जो है प्रेम में डूबे रहे। स्वयं ही आप जगन्नाथ हैं और स्वयं ही भक्त भी हैं, आपकी कृपा के बिना आपके मन को कौन समझ सकता है। आप ही लकड़ी के रूप में योग पीठ पर विराजते हैं और आप ही सन्यासी रूप से भक्ति योग का आचरण करते हैं। मोती और सोने से रचित रेशमी और मखमल के दिव्य वस्त्र सफेद पीले नीले नाना वर्ण के जगन्नाथ पहन रहे थे। वस्त्र पहनाने के बाद फूलों के आभूषण धारण किए, फूलों के कंकण, फूलों का मुकुट और फूलों के हार पहनाए गए। गंध फूल धूप दीप से पूजा करके विविध प्रकार के भोग लगाए गए। तब चैतन्य महाप्रभु अपने मंडली से दर्शन करके सुख पूर्वक निवास स्थान को आए। श्री प्रभु गौरचंद्र ने सब वैष्णवों को अपने अपने स्थान के लिए बिता दी। रात हो गई थी तो भगवान ने गौरचंद्र ने सब भक्तों को बिता दी कि अब आप लोग विश्राम करो और आप एकांत में चले गए, अपने निवास स्थान को सबने गमन किया। किंतु स्रोत दामोदर और पुंडरीक विद्यानिधि हमेशा प्रभु के संग रहते थे। दोनों की जितनी मन की बातें होती एक दूसरे से निष्कपट रूप से सुनाते थे, एक दूसरे को बताते थे। भाषाए वेदाए नीला वैष्णव सभेरे बिरले रहिला ने जानंदे केश्वरे जारे जे भाषाए सभे करिला गमन विद्यानिधि दामोदर संगे अनुचन अन्यो ने तुम्हार जाते के माना कथा निष्का पटे तुम्हें कहे तुम्हारे सर्वथा। अब पुंडरीक विद्यानिधि के मन में एक संदेह पैदा हो गया। क्या जगन्नाथ ने जो मान युक्त वस्त्र धारण किए इसमें पुंडरीक विद्यानिधि को संदेह उत्पन्न हुआ, अतः स्वरूप दामोदर से पूछा, क्योंकि संगी थे ना दोनों एक दूसरे के, तो एक ने दूसरे को कहा। अपने मन में संदेह है किसी को नहीं बता सकते, लेकिन उनको बताया जो अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड बोलते हैं ना, बहुत ही निकट के अपने संगी थे, तो उनको बताया। किसको बताया? स्वरूप दामोदर को। किसने बताया? पुंडरीक विद्यानिधि ने बताया। क्या कहा? मान युक्त वस्त्र भगवान को क्यों देते हैं? पुंडरीक विद्यानिधि कहा स्वरूप दामोदर से, मान युक्त वस्त्र भगवान को क्यों देते हैं? इस स्थान में तो शास्त्रों का विशेष प्रचार है, तब बिना धोरे मान युक्त वस्त्र ठाकुर को क्यों पहनाते हैं? तो स्वरूप दामोदर ने कहा, बात सुनो, यहाँ के स्थान के आचरण के अनुसार दोष नहीं होता है। इस स्थान का आचरण ऐसा है। किसने कहा? स्वरूप दामोदर ने कहा, इस स्थान का आचरण ऐसा है, इसमें दोष नहीं लगता। यदि ईश्वर की इच्छा नहीं होती तो देखो राजा ही मना कर देता। राजा को तो डायरेक्ट भगवान सपना देते हैं, कोई गलती हो तो भगवान राजा को सपना देते हैं और डांटते हैं कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अगर मान के कपड़े पहनने में कोई दोष मानते भगवान, तो भगवान राजा को सपना देते और राजा बता देता कि भाई ये नहीं करना, तो कितने सालों से चला आ रहा है। और जगन्नाथ पहनते हैं, ये किसने कहा? स्वरूप दामोदर ने कहा। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने कहा, ठीक है, ईश्वर को जो करें, परंतु ईश्वर का जो कर्म है उसको सेवक क्यों करते हैं? पुजारी पंडा और बेस धारण कराने वाले और जल लाने वाले, ये लोग अपवित्र वस्त्र क्यों पहनते हैं? चलो भगवान ने पहन लिया तो भगवान का तो कुछ दोष नहीं होता, उनके लिए कोई भी नियम नहीं है, शास्त्रों की बातें उनके लिए नहीं होती हैं, तो भगवान पहने मान के कपड़े तो ठीक है, ये सेवक लोग क्यों पहनते हैं, है ना? ये किसने कहा? पुंडरीक विद्यानिधि ने कहा। देखो, श्री जगन्नाथ तो ईश्वर हैं, उनके लिए सब संभव है, परंतु अन्य सब लोग उनका आचरण क्यों करते हैं? मान वस्त्र के छूने से हाथ धोने पर ही शुद्धि होती है, ना जाने सुबुद्धि होकर सब ऐसा क्यों करते हैं? जो राजा है वो भी मूर्ख है, विचार नहीं करता। देखो, राजा भी मान योग वस्त्र अपने सिर पर दिए हुए थे, राजा ने भी अपने सिर पर मान का कपड़ा पहना। सुन नमदन का, अरे वो भाई सुनो, यह समझ में आती है कि उड़न यात्रा में इसका दोष नहीं है। स्वरूप दामोदर अपनी बुद्धि से पक्ष लेते रहे कि भाई निंदा ना करो, आज के दिन दोष नहीं है। उन्होंने कहा, आज के दिन दोष नहीं है। देखो, श्री जगन्नाथ रूप में पर ब्रह्म अवतीर्ण है, अतः यहाँ कोई विचार नहीं है, शास्त्र का कोई विचार नहीं। पुंडरीक विद्यानिधि ने कहा, स्वरूप दामोदर एक बार सुनो, देखो जगन्नाथ विग्रह तो सर्वथा परम ब्रह्म है, जगन्नाथ जी को शास्त्रों का उल्लंघन करने में दोष नहीं है। क्या नीलाचल में रहने से और सब भी ब्रह्म हो गए हैं? सबने लोक व्यवहार छोड़ दिया, सभी ब्रह्म रूप के अवतार हो गए? ऐसे कहते हुए दोनों हंसते हुए जा रहे हैं। दोनों सखा हाथ में हाथ देकर हंस रहे थे और जगन्नाथ के सेवों पर दोष लगा रहे हैं।
श्री कृष्ण चैतन्य अपने दास में भ्रम करा देते हैं और फिर उस भ्रम को छेदन भी करते हैं। तो आपने ही पुंडरीक विद्यानिधि को भ्रम कराया, अब भ्रम छेदनकारी कृपा की बात सुनो। सभे न जाने न सर्वदा सिर स्वभाव, कृष्ण से जाने न जार जत अनुराग। भ्रमो का राय न कृष्ण आपन दासे रे, भ्रम छेद करे बाजे सदय अंतरे। भ्रम का राय ल विद्यानिधि रे आपने, भ्रम छेद कृपा ओ सोनी वे छने। इस प्रकार रंग ढंग से दोनों प्रिय सखा कृष्ण के निमित्त जहाँ जिसका निवास था वहाँ के लिए चल दिए। दोनों चले गए अपने अपने स्थान में सोने के लिए चले गए। फिर भोजन करके श्री गौरचंद्र के स्थान पर आए, उनके पास आकर के सो गए। श्री चैतन्य सब जानते थे, वे स्वप्न में जगन्नाथ के रूप में उनके पास गए। बड़े उदार पुंडरीक विद्यार्थी ने सपना में देखा कि श्री जगन्नाथ बलदेव दोनों आकर सामने खड़े हैं। किसने देखा सपना? पुंडरीक विद्यार्थी ने सपना देखा। क्या देखा? जगन्नाथ बलदेव दोनों आ गए हैं सामने। पुंडरीक विद्यार्थी ने दर्शन किया जगन्नाथ जी के क्रुद्ध रूप में, गुस्सा। जगन्नाथ जी जो है गुस्से में दर्शन दे रहे हैं। इतने जगन्नाथ ने पकड़कर उनके मुंह में थप्पड़ मारने लगे। खूब निंदा करी थी ना। मुंह में थप्पड़ मारने लगे। श्री जगन्नाथ और बलदेव दोनों भाई मिलकर दोनों गालों पर थप्पड़ मारने लगे। और ऐसे कठोर थप्पड़ मारे कि दोनों गालों में अंगुली छप गई। अरे जगन्नाथ जी के और बलदेव के तो ऐसे हाथ अंदर है ना, छूट है। यही जब मारना होता है तो हाथ निकाल लेते हैं अपने बाहर हैं, और उंगलियां भी छप गई गाल में हैं। ऐसे थप्पड़ मारे, उंगलियां छप गई। अतः दुखी होकर पुंडरीक विद्यानिधि ने कहा, हे कृष्ण रक्षा करो, मेरे अपराध क्षमा करो। इस प्रकार कहकर चरणों में गिर पड़े। क्रोध रूप जगन्नाथ विद्यानिधि देखे, अपने धरी तान चढ़ाए न मुखे। दुए भाई मेले चढ़ मारे दुए गाले, हे न दृढ़ चढ़े अंगुली गाले फूले। दुख भाई विद्यानिधि कृष्ण रक्षा बोले, अपराध क्षम बलि पड़े पद तले। तो पुंडरीक विद्यानिधि चरणों में गिर पड़े, फिर बोले, प्रभु मुझे किस अपराध पर मार रहे हो? क्या बोले? मुझे किस अपराध पर मार रहे हो? तब श्री जगन्नाथ ने कहा, तेरे अपराध का तो अंत ही नहीं है। क्या कहा? तेरे अपराध का तो अंत ही नहीं है। देख, मेरी और मेरे सेवक की तो कुछ जाती ही नहीं है। इस जगह रहकर तुम ये सब कुछ जान चुके हो, तब तुम जाति नाश करने वाले इस स्थान में क्यों रहते हो? तुम अपनी जाति की रक्षा करना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। ना तो मेरी जाति है ना मेरे सेवकों की जाति है ना। तो मैं जैसा चाहूँ करूँगा, मेरे सेवक जैसा चाहें करेंगे। हम लोगों की कोई जाति नहीं है। तुम अपनी जाति की रक्षा करना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। कौन बोले? जगन्नाथ जी बोले। जाति रक्षा के लिए तुम अपने घर चले जाओ। मैंने इस यात्रा का जो नियम बनाया है उसमें भी अनाचार का संबंध तुमने मन से किया है। सेवकों की निंदा करके मुझे ब्रह्म कहा और मान युक्त वस्त्रों में दोष निकाला है। स्वप्न में इस प्रकार पुंडरीक विद्यानिधि के मन में बड़ा भय पाकर श्री चरणों में मस्तक को धरकर रोने लगे। चरणों में मस्तक धरकर कौन? पुंडरीक विद्यानिधि। प्रभु, इस पापी के सब अपराधों को क्षमा करो। हे प्रभु, आपके आगे स्वीकार करता हूँ, मैं अपराधी हूँ। प्रभु, जिस मुख से मैंने आपके सेवकों के प्रति हंसी की थी, मेरे उस मुख को आपने अच्छा अच्छा दंड दिया है। खूब झापड़ मारे मेरे गालों में, अच्छा किया। मेरे लिए आज का जो दिन है बहुत ही बढ़िया रहा। पुंडरीक विद्यानिधि कहते हैं, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा हुआ। आपने मुझे पिटाई की है, बहुत अच्छा हुआ। जो मेरे मुख और गालों पर भाग्य से आपके कर कमल का स्पर्श हुआ है, और चिन्ह भी बन गए मेरे गाल में आपके।
प्रभु ने कहा तुम्हारे ऊपर कृपा के लिए ही अपना सेवक जानकर दंड दिया। भगवान भी बोले तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए मैंने पिटाई की है तुम्हारी अपना सेवक मान करके, नहीं तो किसको दंड देते, उनको तो यम दंड मिलेगा, भगवान थोड़ी दंड देंगे, है ना। तो भगवान कहते हैं स्वप्न में पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति कृपा दृष्टि करके दोनों भाई जगन्नाथ और बलदेव दोनों भाई मंदिर में चले गए, मंदिर से निकल के आए और पिटाई की और फिर मंदिर चले गए। चले गए स्वप्न देखकर विद्यानिधि जागे। अब विद्यानिधि की आंख खुली, सपना देखा, अब सपना देख करके आंख खुल गई और गालों में थप्पड़ के चिन्ह देख करके हंसने लगे, मेरे सचमुच झापड़ के निशान भी हैं गाल में, सपने में भी जो है पिटाई लगी तो निशान है झापड़ के, हाथ के थप्पड़ों से पूरे गाल फूले हुए। ये देखकर पुंडरीक विद्यानिधि बोले बड़ा अच्छा हुआ, जो अपराध किया था उसका दंड भी पा लिया प्रभु, अच्छा किया, थोड़े में ही अपराध दूर कर दिया, थोड़े में, क्योंकि निंदा करना तो बहुत बड़ा अपराध होता है और उससे तो कितना बढ़ता जाता अपराध, है ना। जैसे आग होती है ना, घर में आग लगी तुरंत नहीं बुझाई है तो कितना आग लग जाएगी, उसी वजह से अपराध का तुरंत दंड नहीं मिलता है तो अपराध कितना बढ़ता जाता है, है ना। तो पुंडरीक विद्यानिधि क्या बोले, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत कृपा करी, थोड़े में ही मेरा है दूर कर दिया अपराध, दूर कर दिया। स्वप्ने प्रेम ने दी प्रति प्रेम दृष्टि करी, देउले आइला दुई भाई राम हरी, स्वप्ने देखी विद्या ने दी जागिया उठिला, गाले चाड़े सबे देखी हंसी ते लागिला, श्री हंसते रे चाड़े सबे फूली अच्छे गाले, देखी प्रेम ने दी बोले बड़े भाले भाले, जेने कहिलो अपराध तार शास्ति पाइलो, भलाई करिला प्रभु अल्पे लाइलो। तो पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा देखो, जिनको भगवान ने थप्पड़ मारा उनकी महिमा देखो, सेवक के ऊपर जितनी दया है उसकी यही सीमा है, इतनी दया जो है इससे बढ़कर के दया और क्या होगी सेवक के ऊपर, कि भगवान अपने हाथ से पिटाई करें सेवक की। श्री भगवान ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को भी इसी प्रकार अपने हाथ से थप्पड़ नहीं मारा, अपने पुत्र के ऊपर भी है अपने हाथ से थप्पड़ नहीं मारा। जानकी रुक्मिणी सत्यभामा आदि लेकर जितने उनकी पत्नियां हैं, सो जिनका अपराध होता है उन्हें साक्षात दंड तो देते थे परंतु स्वप्न का कृपा और दंड कभी नहीं दिखाई दिया। सपने में भगवान कृपा करें दंड दें तो जागने में नहीं दिखाई पड़ता कभी, ये पहली बार कि जागने पर भी सपने का दंड दिखाई पड़ा। स्वप्न में चाहे दंड मिले चाहे धन मिले परंतु जागने पर कुछ भी नहीं रहता। प्रभु जिनको स्वप्न में दंड या कृपा करते हैं तो वो साक्षात लोगों के दृष्टिगोचर होकर फल धारण करता है, ऐसे व्यक्ति से संसार में बड़ा भाग्यवान कोई नहीं, तो जागने पर भी जो है वही चिन्ह बना रहे ऐसा भाग्यवान कौन हो सकता है, कारण कि दुष्टों को प्रभु सपने में भी कुछ नहीं कहते, जागृत अवस्था क्या सपने में भी भगवान कुछ नहीं बोलेंगे कि तूने गलती की, भगवान ही बोलते हैं। इन सब बातों को विचारक समझ ले कि जो मुसलमान लोग निंदा व हिंसा करते हैं वे भी स्वप्न में अनुभव चाहते हैं, वे निंदा हिंसा करते हैं तथा स्वप्न में भी शांति नहीं पाते, सपने में शांति नहीं मिलती क्योंकि भगवान तो कभी दंड देते नहीं ना उनको, है ना। मुसलमानों की तो क्या बात, जो ब्राह्मण सज्जन है वे भी प्रत्येक क्षण में जितने अपराध करते हैं सो अपराध करने पर दोनों लोगों में दुख पाते हैं, परंतु प्रभु अभक्त पापियों को सपने में भी शिक्षा नहीं देते, पापियों को भक्तों को सपने में भी शिक्षा नहीं देते। प्रभु जिनको स्वप्न में शिक्षा देते हैं वे अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं कि भगवान ने सपने में शिक्षा दी। प्रभु ने स्वप्न में पुंडरीक विद्यानिधि को मारा, इस कृपा को सब लोगों ने साक्षात देखा, तब सवेरे पुंडरीक विद्यानिधि उठे और देखा कि दोनों हाथ के थप्पड़ों से गाल फूले, रोज स्वरूप दामोदर आते थे वे दोनों एक साथ जगन्नाथ दर्शन करते थे, स्वरूप दामोदर
प्रतिदिन जैसे आते थे उसी तरह उस दिन भी आए, आकर उनसे बोले भाई जगन्नाथ दर्शन के लिए जल्दी चलो, क्या कारण है जो आज सैया से उठे नहीं। तब पुंडरीक विद्यार्थी ने कहा अरे भाई यहाँ आओ एक क्षण बैठो तो सब कुछ बताऊं। सुरभ दामोदर ने आकर देखा दोनों गाल फूले हैं, थप्पड़ों के बड़े बड़े चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। सुरभ दामोदर ने जिज्ञासा की ये क्या बात है, गाल कैसे फूल गए, क्या कोई बीमारी हो गई है। पुंडरीक विद्यार्थी ने हंसकर कहा सुनो भाई कल समस्त संशय दूर हुआ, मांड के वस्त्रों की जो अवज्ञा की थी उसका दंड इन गालों में दिखाई दे रहा है। आज स्वप्न में श्री जगन्नाथ बलदेव ने आकर दो घड़ी तक थप्पड़ मारे, दो घड़ी मतलब 48 मिनट जगन्नाथ बलदेव मिल करके 48 मिनट तक थप्पड़ मारे हैं और विश्राम नहीं लिया, रेस्ट नहीं किया, लगातार जगन्नाथ दे थप्पड़ दे थप्पड़, इधर से उधर से 48 मिनट तक। उन्होंने कहा मेरे पहनने के वस्त्रों की निंदा करते हो, यो कहकर दोनों भाई थप्पड़ मारने लगे, जितनी अंगुलियों में अंगूठी थी वे सब गालों में लगी। बहुत अच्छी प्रकार से पूछने भी नहीं पाया, लज्जा बस किसी से बात नहीं करता हूँ, अब मुझे लज्जा दे मैं किससे बात करूं, गाल अच्छे होने पर ही बाहर निकलूंगा, जब गाल ठीक होंगे तभी बाहर निकलूंगा, बड़ी लज्जा आ रही है लोग देखेंगे क्या कहेंगे। भाई ये कथा अन्य से तो कहने योग्य नहीं हूँ, मैं तो अपने हृदय में अपना भाग्य मानता हूँ, अपराध के अनुरूप अच्छा दंड मिला है, यदि दंड ना होता तो वहाँ अंधकूप में गिर जाता, यमदंड मिलता ना, यमराज का दंड मिलता है ना। पुंडरीक विद्यार्थी के प्रति प्रभु स्नेह का उदय देखकर स्वरूप दामोदर आनंद विभोर हो गए, कारण मित्र की संपत्ति को देखकर मित्र को आनंद होता है, स्वरूप दामोदर बहुत आनंदित हो गए। अच्छा दोनों परम आनंदमय हंसी में हंस रहे थे, स्वरूप दामोदर ने कहा हे भाई सुनो ऐसा अद्भुत दंड तो ना देखा और ना सुना, ऐसा दंड स्वयं आकर सपने में साक्षात प्रभु दंड दे, अन्य जगह तो ऐसा नहीं सुना, केवल तुम्हारे शरीर में ही देख रहा हूँ। इस प्रकार पुंडरीक विद्यार्थी और स्वरूप दामोदर दोनों सखा संतुष्ट होकर कृष्ण कथा रूपी रस में डूबे रहते थे और दिन रात का अनुसंधान नहीं रहता था। पुंडरीक विद्यार्थी का ऐसा प्रभाव था और इसी कारण प्रभु गौरचंद्र इनको बाप कहकर संबोधन करते थे। पुंडरीक विद्यार्थी को गौरचंद्र क्या बोलते हैं, बाप। चरण छूटाने के भय से वे गंगा में स्नान नहीं करते थे, पुंडरीक विद्यार्थी गंगा जी में स्नान नहीं करते थे, क्यों, तो गंगा जी का जो है जल मेरे पैरों में पड़ेगा तो गंगा जी में स्नान नहीं करते थे, वे केवल गंगा का दर्शन करते थे और गंगा का जल पीते थे, कभी स्नान नहीं करते थे, है ना। श्री गौर सुंदर इस भक्त के नाम को लेकर पुंडरीक बाप ऐसे कहकर विशेष रूप से रोते थे, कैसे पुंडरीक विद्यार्थी चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे, पुंडरीक बाप और रोते थे। पुंडरीक विद्यार्थी का चरित्र जो सुनेंगे, सुने सब लोग सुने ध्यान से, पुंडरीक विद्यार्थी का चरित्र जो सुनेंगे उनको श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल अवश्य मिलेंगे। सपने आसे शास्त्र करे आपन ऐसा चाहते और सुनने नाही सबे देखे नु तो माते हे नमते दुई सखा भासे न संतोषे रात्रि दिन न जाने ने कृष्ण कथा रसे हे न पुंडरी के विद्यानिधि रे प्रभाव इहन से गौर चंद्र प्रभु बोले बाप पाद स्पर्श भय न करे न गंगा स्नान सबे गंगा देखे न करे न जल पान ये भक्त रे नाम लई श्री गौर सुंदर पुंडरी के बाप बलिकांदे ने बिस्तर पुंडरी के विद्या निधि चरित्र सुनी ले अवश्य तहारे कृष्ण पाद पद में मिले। श्री कृष्ण नित्यानंद मेरे जीवन प्राण है, उनके चरण कमल युगल के सानिध्य में मैं वृंदावन दास की लीलाएं गान करता हूँ। ये चैतन्य भागवत में जो कथा है ये सबसे अंतिम है, यहाँ पर चैतन्य भागवत समाप्त होता है, तो सोचिए कितनी सुंदर कथा होनी चाहिए, ग्रंथ के अंत में अगर बात लिखी हो तो कितनी सुंदर। तो आज के दिन जो है ये घटना हुई थी, है ना।
है ना, इसलिए आपको सुनाया पूरण षष्ठी की घटना है। पूरण षष्ठी महामहोत्सव की जगत कुशल प्रभुपाद की, जैसे राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरी सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय।